Thank you. And Sri Krishna came and gave place to her. How can give place to Vaishnava? They are explaining. Now, Sasananda Prabhu, kuch bolenge. Aur Ranjit ji ke God, aur yahan par baithe hue hai, हमारे रसानंद प्रभु जी आश्रम सुनाएंगे किसी बात की कोई है किसी बात की
रामचंद्रोरण मिलिता देना श्री गुरवे नम गुरवे गौरचंद्राय राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नर्मदाय नमो नमः राधा श्रावित पल्लव गंधर्वे राधा पदांग विलसा मधुरा राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार भूमिने रमता कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर जीवनाजी गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग महाराज जी का अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम श्री बेलवन श्रीवन है। इसलिए श्री मतलब लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी बहुत है, इसलिए जो मूल लक्ष्मी वो श्रीमती राधा राय और एक लक्ष्मी जो वैकुंठ में रहती है उनको प्रकाश है वो रहती है वैकुंठ में। दूसरे लक्ष्मी अमूल लक्ष्मी जो राधा रानी और कृष्ण को पास में उनका नित्य साधनी शक्ति गोलोक वृंदावन। तीसरे लक्ष्मी रहती है स्वर्ग में जो वामन देवता शक्ति है, वामन देवती शक्ति है। और एक लक्ष्मी इसी मर्त्य जगत में जो लक्ष्मी जो चंचला, इसलिए लक्ष्मी तो बहुत है, ये भी भर लक्ष्मी है। आज किसको गरीब कल किसको अमीर बनाता है, ये बहुत चंचल लक्ष्मी है। लेकिन मूल लक्ष्मी इसलिए जो धाम ये ब्रजमंडल, ये ब्रजमंडल का जो मूल अधिष्ठात्र देवी श्री राधा रानी, इसलिए ये स्त्री पद मतलब ये राधा रानी की ही पद है। लेकिन राधा रानी यहाँ पर लक्ष्मी को यहाँ पर तपस्या करने के लिए यहाँ पर अपना आश्रय दी है। लेकिन मूल जो लक्ष्मी वो श्रीमती राधा रानी जो देवी कृष्णमयी प्रभुता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा, इसलिए वो देवी है। इसलिए जो चतुर्थ मान है एक राधा रानी के प्रकाश, इसलिए ये जो महिला, ये महिला का नाम ऊर्जा प्रद है। ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश तेज है, इसलिए मूल तेज मूल शक्ति स्वरूपी कौन है, इसलिए भर्गो देवस्य धीमही। इसलिए जो देवस्य भर्गो देवस्य कृष्ण देवस्य भर्ग मतलब तेज, जो कृष्ण का है कृष्ण को भी जो तेज देने वाली अपना प्रकाश में श्याम सुंदर को भी जो प्रकाश करने वाली वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उमा रमा सत्या सती चंद्रा रूपिणी राधा अवतार सभे सामना वाली, इतने सारे शक्ति सब के सब ये राधा रानी से ही ये प्रकाशित होते हैं। इसलिए मूल जो देवी वो श्रीमती राधा रानी वो कृष्णमयी है, जिनका बाबार भीतर कृष्ण ही कृष्ण है। इसलिए इसमें राधा मतलब कृष्ण न आराध्यते इति राधा, मतलब श्याम सुंदर जिनको आराधना करती है। इसलिए कल हम सेवा विषय में गए थे, यहाँ पर देखा विश्व ब्रह्मादि जिनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं जब वृंदावन में सर्वत्र हमने जाकर कृष्ण को सुना, लेकिन कृष्ण कहाँ मिले, मतलब सेवा में किस रूप में मिले, मतलब राधिक देखा वो पराम परतत्व राधा रानी की चरण को पलटते हुए इस रूप में हमने देखा है, इसलिए और कृष्णम समारा है जी। इसलिए राधा मतलब जो विशेष पुरुषोत्तम कृष्ण को जो आराधना करती है और वो राधिका वो पर देवता जो सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है कट राधा रानी और सर्व लक्ष्मी वही मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी मूल लक्ष्मी। इसलिए जीवन मतलब जहाँ पर भी राधा जी की बन है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी यहाँ कर यहाँ पर तपस्या कर रही है। कहते क्यों तपस्या कर रही है? कहते लक्ष्मी कभी उन्होंने कृष्ण की महिमा को उन्होंने श्रवण किया, कृष्ण महिमा को श्रवण करके यहाँ पर ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो स्थान है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो उपासना, ये सर्वश्रेष्ठ उपासना समझो, ये स्थान एक बहुत बड़ा निदर्शन, एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हम लोग पैठा जाएंगे वहाँ पर कृष्ण स्वयं नारायण का रूप धारण करते हैं, लेकिन नारायण का रूप धारण करने पर जब वहाँ पर ब्रजगोपियां आती है, नारायण को दर्शन करके हुए आकृष्ट नहीं हुए, उन्होंने नारायण को उन्होंने प्रणाम कर दिया, बोले हमारे श्याम सुंदर कहीं बैठे हो, हमारे श्याम सुंदर कहाँ है, और नारायण रूप में आकृष्ट नहीं हुए। और राधा रानी आते ही तो उनको दो हाथ अपनी आंख उनके अंदर प्रवृत्त कर गया। ये हमारे ब्रज गोपियों की प्रेम की महिमा है, लेकिन यहाँ पर गोपियां राधा रानी को नारायण के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, लेकिन स्वयं लक्ष्मी जब हुए कृष्ण की माधुर्य को सौंदर्य को श्रवण करती है, लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पर कठोर तपस्या कर रही है। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब गए, जब दक्षिण यात्रा में गए और वहाँ पर श्री वैकुंठ भट्ट घर में महाप्रभु आए, वहाँ पर किसी महीना में आपस में हरि कथा होते होते महाप्रभु बात बात करने के प्रश्न कर दिया। यदि वेंकट भट्ट ये बताओ, हमने सुना है तुम्हारी जो लक्ष्मी तुम्हारा ये आराध्या देवी वो हमारे श्याम सुंदर को पाने के लिए कृष्ण को पाने के लिए वो तपस्या कर रही है। और इतने में वेंकट भट्ट ने कहा प्रभु कहते कहाँ पर पढ़ा, कभी भागवत में हमने पढ़ा, कहते हम भी तो भागवत पढ़ा है लेकिन भागवत में तो हमें मिला नहीं है चीज को। कहते क्यों मिला नहीं? तब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु तीन चार जगह से लोगों को उठा करके उन्होंने उनको स्थापने को स्थापन किया। कहते वो भागवत ही भागवत एक एक कल्प वृक्ष है, आप कैसे मांगोगे भागवत उसी अनुरूप हमारी इच्छा को पूरी करता है। इसलिए कृष्णदास देवराज गोस्वामी ने कहा जाओ भागवत अपना वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य कर चैतन्य भक्कर तुम्हें लिख कर समझो तभी तो बुद्धि में तुम्हें सिद्धांत तरह। अगर तुमको सिद्धांत रसों में तरंग में प्रवेश करना, रस समुद्र में प्रवेश करना तो अकेले भागवत मत पढ़ो, बल्कि किसको पास में? क्या वैष्णव के पास में? क्या कौन सा वैष्णव होनी चाहिए, किस जातीय वैष्णव होनी चाहिए? जैसे जैसे वैष्णव नहीं, क्योंकि जो महाप्रभु को अपना जीवन का सर्वोच्च जीवन बनाया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का भक्त का संग करो, फिर तो भागवती की जो पूर्ण रस रहे फिर तभी तो आपको प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़े, लेकिन भागवत में लक्ष्मी स्वयं कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही है ये चीज उनको नहीं मिला, लेकिन महाप्रभु स्वयं उस श्लोक को उत्थापन करके दिखाते है। तो उन्होंने श्लोक दिखाया जिस समय कृष्ण ने काव्य नाग बन था, लक्ष्य समय वहाँ पर नाग पत्नियां भगवान को स्तुति की है, वहाँ पर श्लोक है विहाय धमान सुप्रता। फिर लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके जो अकाश पति परायण और नारायण का अंकताई सर्वत्र जो भक्त वो क्या कर रही है? कहते बेलवट में विहाय धमान सारे कामना वासना को छोड़ करके वो कठोर तपस्या कर रही है। कहाँ पर? ये बेलवट में तपस्या कर रही है। कहते देखो ये श्लोक है। फिर उन्हें दूसरे श्लोक दिखाया जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए, ब्रज में आ करके हुए गोपी प्रेम की सर्वोत्तमता को उन्होंने देखा, देखकर गदा चौंध हो गया, वो ठान नहीं लगा पाए इनका कितने गंभीर प्रेम में की ब्रज गोपियां डूबी हुई है। तो उसी समय उद्धव जी ब्रज गोपियों को महिमा को बताए, जब नायम प्रसाद, जब ये ब्रज गोपियों को जो सौभाग्य मिला, जब वह सौभाग्य लक्ष्मी को भी नहीं मिला, स्वर्ग में जो अप्सरियां, जो देव पत्नियां जिनका शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती, जब उनको भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं, लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं, जो सौभाग्य किसको प्राप्त है, तो जो सौभाग्य किए ब्रज गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं। इसलिए उन्होंने जब ये श्लोक को उठा करके उन्होंने दिखाया, मैंने तो पढ़ा था, लेकिन मेरे को तो ठीक ही दिखाई भी हम ध्यान ही नहीं किया, लेकिन भगवत का श्लोक है। हाँ, इसलिए इतने में सब महाप्रभु फिर प्रश्न किया, ये बताओ हमारे कृष्ण में ऐसे कौन सा गुण है, तुम्हारा लक्ष्मी हमारे कन्हैया ये तो वृंदावन में घूमते गैया के पीछे पीछे दौड़ने वाले, हाँ, और गोप है, और तुम्हारा नारायण वैकुंठ में रहते हैं, ऐश्वर्य में रहने वाले, और उनको ये अंकारी कटरा लिए है, लेकिन हमारे कन्हैया तो सुहाला इनको पाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे कृष्ण में ऐसे क्या दीजिए बताओ। तो उन्होंने उत्कृष्ट कृष्ण यद्यपि नारायण और कृष्ण में जैसे तत्व तो ये एक ही है, तत्व तो अलग नहीं है, हाँ, लेकिन केवल रस में ही कृष्ण केवल रस विशेष रस के द्वारा ही कृष्ण सर्वोपरि है। तो उन्होंने उन्होंने कुछ बोल नहीं पाए, फिर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु फिर शास्त्र से फिर श्लोकों को प्रकट किया, कहते हो हमारे कृष्ण के अंदर में विशेष चार गुण है, जो चार गुण किसी को अंदर में ये चार गुण नहीं, तो वो क्या क्या है। तो उन्होंने बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिसी असुल माधुर्य प्रेमा मंडित प्रिय मंडलम त्रिगत मानसा करती मुरली कलकुंजित असमानार्थ रूपस्त्री विस्मापीत चराचर। मतलब कृष्ण के अंदर विभेद चार गुण है, इसका मतलब आप सबको आप जो गौड़ीय वैष्णव में आए और महाप्रभु का आदित्य में हम जब ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत भाग्य से हम ये गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु का लाइन में हम बड़े भाग्य से हम आए, साधारण होते बेल बजाना, मगर बेल की वजह से बेल के बजाना बहुत भाग्य से हम लोग आए हैं। इसलिए बोले कृष्ण का विशेष क्या गुण है, जैसे सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिसी, कृष्ण जो लीला किया है फिर ऐसे लीला किसी अवतार में नहीं, किसी अवतार में राम रचाए भगवान, किसी अवतार में किसी अवतार में नहीं, राम अवतार में नहीं, नारायण अवतार में भी नहीं। इसलिए राम अवतार में जो लोग आकृष्ट हुए, हाँ, जो ऋषि ऋषियों ने श्रुति करी और तरह तरह का आकृष्ट हुए, लेकिन राम उनको इच्छा पूरी नहीं कर पाए, नहीं ये मर्यादा पुरुषोत्तम लीला, इसमें मैं तुमको तो दूसरे के स्त्री को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, सब कृष्ण लीला से पूरी होती, उस सब के सब कृष्ण लीला में आए, और भगवान कृष्ण ये दिख पर राम लीला उन्होंने किया है, जो किसी अवतार में ये लीला नहीं है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं संत यद्यपि मैं लीला मनोहरा नाही जानी स्मृत राम से मन में निर्दृष्ट भवे, जब ये विश्व राम ऐसे राम है यद्यपि मेरे बहुत लीलाएं हैं, रामलीला के बारे में चिंता करते ही मेरा मन खिलबिल मच जाता है, मैं सोच नहीं पाता मन में क्या क्या होता है। इसलिए प्रभु की दिव्य लीला किसी अवतार में भगवान कभी किसका जुगन खाए, लेकिन कृष्ण ऐसे का अवतार जहाँ पर सखा पर जुगन खाते, किसी अवतार में भगवान किसको कंधे पर चढ़ाया है, लेकिन एक कृष्ण अवतार में कंधे पर चढ़ाते भगवान, किसी अवतार में भगवान को साथ में से पकड़े भगवान सारा दुनिया की साथ पकड़ करके सारा विश्व ब्रह्मांड में माया भी घुमा दे, लेकिन किसी अवतार में मैया दुर्गा ने कन्हैया को साथ पकड़े, किसी अवतार में भगवान से बांधा है, लेकिन किसी अवतार में भगवान स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं, किसी अवतार में भगवान उनको सखियों के चरण में गिरे है, अपना पत्नी के चरण में गिरे, सीता राम अवतार में तो सीता को बाहर से निकाल दिया, उनका निकाल दिया, चंद्र में भेज दिया, लेकिन कृष्ण अवतार में अगर कृष्ण जब बोलेंगे गोपियों पर आ जाएंगे यहाँ से निकल जाओ, तो गोपियां क्या बोलेंगे, आप जैसे काले को कौन पूछता है, आप यहाँ से निकल जाओ, आपका कोई जरूरत नहीं, आपको कृष्ण को ही निकाल देते हैं कुंज से। बता दी कृष्ण स्वयं चरण जुटा में निकालते राधारणी को छोड़कर उनको सखी के चरण में, ये लीला किसी अवतार में नहीं, इसे भगवान की विशेष लीला है। इसलिए लीला कल्लोल वाणी अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडल, उनका के प्रेम माधुर्य है जो माधुर्य किसी अवतार में नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी भागवत का दो श्लोक को द्वारा कृष्ण का प्रेम माधुर्य को उन्होंने दिखाया। कृष्ण के अंदर में ऐसे प्रेम माधुर्य है, गोपियां जब श्याम सुंदर का दर्शन करती है, दर्शन करते समय कृष्ण अभी गया करा करके आ रहे हैं ब्रज में, और ब्रज गोपियां दर्शन करते करते अटति जन भवान कृष्णा जब गया जनाते में आ रहे गया तो खून से जो घोर घोर गए कृष्ण का सारा शरीर को घोर विचरित हो गया। अरे सुंदर घुमराली केस हाँ अपना मुंह गोपरम पड़ा हुआ, जब श्याम चंद्र आ रहे ब्रज गोपियां हुआ रूप का दर्शन करते हुए कहते हैं जिस समय वो सुंदर को रूप दर्शन कर रहे जब उनको आग का एक पल जब से ही उस समय गोपियां ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, कहते ब्रह्मा तो सृजन करना जानता ही नहीं, इतने सुंदर कृष्णा इतने प्यारे और इतने सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए केवल दो आंख ले लिया और उसका फिर पलक ले लिया, अगर सारा शरीर में आंख ही आंख हो जाता तो सभी कृष्ण रूप दर्शन करके सभी आनंद मिलता। क्यों एक पलक छपते ही कृष्ण दर्शन का जो व्याघात हो सभी गोपियां उसको विघातक और सुंदर करते हैं। अब भगवान जब रात्रि जाए हाँ कितना दिन रात रहता है, कहते ब्रह्मा का एक रात्रि है इतने दिन करोड़ साल तक, लेकिन ब्रज गोपियों को लगा अभी तो अभी हम आए रात कर रहे इतने जल्दी कैसे रात की खत्म हो गया। कभी कृष्ण का ये प्रेम माधुर्य है और कृष्ण का एक हल्दी माधुर्य प्रेम माधुर्य त्रिजय का त्रिजय का मानव का दर्शी मुरली कलकुंजित ध्वनि मजबूत चमत्कारी का विश्व ब्रह्मांड में उथला पुथल बनी जाता है वो बल की ध्वनि जब श्री अनंत देव को काम में पड़ता है उनका दिमाग किस टकरा जाता है, जब इंद्र सुनता है उसका बुद्धि में डमाडोल हो जाता है, जब ब्रह्मा सुनते हैं जब दशोत्तर सुनते सब बुद्धि विवर्ण्य हो जाता है। इसलिए तेज वायु परिणाम जैसा बुद्धि भयो जब प्रतिथर करता, इसलिए जहाँ पर सूर्य एक जगह में चंद्रमा एक जगह में खड़ा हो जाता है पिघल जाता है जमुना नदी उल्टी बहने लगती है ये बर्फी कितने चमत्कार का करेगा। और कृष्ण का और एक माधुर्य रूप माधुर्य है कृष्ण देखने में कितने सुंदर कितने सुंदर कोई नहीं, इसलिए लक्ष्मी भी कृष्ण रूप में आकृष्ट होकर के हाँ जब लक्ष्मी ने कठोर तपस्या की भगवान जब संतुष्ट होकर के बोले लक्ष्मी क्या बात है क्यों मेरी तपस्या कर रहे हो, कहते प्रभु अब घर रास्ते में मैं प्रवृत्त करना चाहता हूँ, इसलिए कहते लक्ष्मी कि लक्ष्मी शरीर से नहीं होगा, अगर रास्ते में प्रवृत्त करना तो पहले तो गोपी घर में जन्म लो, फिर गोपियों घर में झाड़ू लगाओ गड्ढा भी रहो हाँ, और मेरे साथ में शादी नहीं होगी किसी दूसरे गोप से शादी होगी, मेरे को परम ज्ञान उसमें प्रेम करना पड़ेगा। कहते क्या मेरे घर में शास्त्र का कभी थोड़ी है, नहीं तो कहते मैं झाड़ू लगाऊंगी, हाँ शादी मैं आपसे भी कर सकती हूँ दूसरे शादी क्यों करूंगी दूसरे से मैं आगे नहीं कर सकती हूँ। कृष्ण बोले देखो मैं ग्वाला हूँ मैं गोप हूँ, जब तक तुम्हारे अंदर में ये गोप अभिमान नहीं आए तब तक मुझे तो प्राप्त नहीं कर सकते हो कि लक्ष्मी अभिमान के द्वारा मुझे मिल नहीं सकती है, इसलिए तुम गोप घर में जन्म कभी ये नहीं कर सकता। इसलिए विश्वनाथ विचार कहते हैं लक्ष्मी अभी भी को लक्ष्मी अभिमान को छोड़ नहीं पाई, अभी भी लक्ष्मी बिहार है कामान सुखी रश्मि सफलता, अभी भी दस साल में करती हुई लक्ष्मी अभी ये तपस्या कर रही है अभी भी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण को पाना तो माधुर्य को द्वारा ही मिलेगा, ऐश्वर्य को द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण स्वयं मुक्त हो जाते हैं, अपना रूप को तय करके इतने कृष्ण सुंदर है, द्वारका इस भगवान से मुक्त हो जाते हैं। नारायण भी भगवान कृष्ण को सौंदर्य को दर्शन करने के लिए नारायण लास्ट में चोरी काम करते हैं, वो चोरी करते हैं, द्वारका से बच्चों को छुड़ाते हैं। जब कृष्ण वहां पर पहुंचे बोले प्रभु आपका यही रूप को दर्शन करने के लिए मैंने चोरी की, इतने कृष्ण सुंदर है, इतने कृष्ण अपना रूप को देखते ही अपना दलित रूप का मुक्त बहुत सुंदर है, ये रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं, कहाँ सुंदर है। तब उनको मन में इच्छा होता है कि कब राधा रानी बन जाओ, राधा रानी बन करके ये कृष्ण स्वरूप में आने कर दो। इसलिए कई जगह में कृष्ण ही स्वयं राधा रानी भाव अंगद राशि को लेकर के अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए वो कली युग में सचिन नंदन गौ हरि बन करके महाप्रभु आते, इतने कृष्ण सुंदर है। जो महाप्रभु ने इस बात वेंकट वध को सुनाया, वेंकट वध सुन सुन करके बेहाला हो गया, आश्चर्य हो गए, हमने कभी इतने भी नफा सुने ही नहीं, इतने सुंदर कृष्ण, इसे इनका मन भी गवादन हो गया और उनका पूरा परिवार के परिवार संप्रदाय में थे। हाँ, लेकिन महाप्रभु की हरिकथा सुन करके अब तो हम लोग थोड़ी बहुत सुन रहे हो, आपको कितना अच्छा लगा होगा। यहाँ पर स्वयं महाप्रभु और राधा रानी का भाव से बोलते होंगे और भगवान आप सब जो हो वो कथा कितने रसी, रसा कितने सुंदर, जो कथा कितने प्रेम भरी कथा हो आप ही समझ लीजिए। जहाँ पर स्वयं महा कृष्ण ही राधा भाव से विवादित होकर के कृष्ण का गुरु महिमा को पान कर रहे, वो सब मानो वो कथा नहीं, वो रस की नदी बह रही थी वहां पर, और चार चार महीना तक उन्होंने वही पर रह कर कृष्ण के साथ सुनाया। उनको सुन करके तो उनका मान एकदम झगमगा गया और उन्होंने श्री संप्रदाय से वो सबके सब परिवार बदल करके सब कृष्णा महाप्रभु के अवसर में हमारे गौरी संप्रदाय में राधा कृष्ण के जीवन की प्रेम भरी उपासना में वो सबके सब वहां गए, जिसमें एक हुए तो प्रबोधानंद सरस्वती जो राधारत सुधारी थी, जिस ग्रंथ को उन्होंने रचना की महाप्रभु ने सूत्र रूप में उसको बात उनको सुनाए थे, इसलिए इतने सुंदर ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। और गोपाल वल्लभ गोस्वामी ये भी कभी आनंद मंजरी है और उनको बैठक सब के सब बदल गए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कभी हम किसी श्रेष्ठ वस्तु पाने से पहले अगर उससे कोई नित्य वस्तु अगर हमें मिल गया, अगर हमें कहीं श्रेष्ठ वस्तु मिल रहा है तब अधिक वस्तु न होता है, अधिक वस्तु ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, हम श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने कर रहे हैं, श्रेष्ठ वस्तु तो प्राप्त कर ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये लक्ष्मी को साथ में आए रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं अपनी शिक्षा लक्ष्मी पर अधिपति व्यवहार है। अगर हम राधा कृष्ण का प्रेम सेवा करना चाहते हैं, लक्ष्मी के प्रति जो भावना है जो प्रेम छोड़ो, लेकिन लक्ष्मी तुमको खेच करके बैठक पर ले जाएगी, फिर तुमको वृंदावन में जाने नहीं देगी, लेकिन हम लक्ष्मी को पास में आए, लक्ष्मी को पास में बैठे, लक्ष्मी को पास में क्यों आए, कारण क्या है, इसलिए आए। हाँ, हम देखने के लिए आए, देखो लक्ष्मी जैसे प्रति प्रधान आई वैकुंठ में रहने वाली इतनी श्रेष्ठ, लेकिन ये भी राधा रानी की महिमा ब्रजनंदन श्याम सुंदर की महिमा को जान कर इनका चित्र में जगमगा गया। ये भी वो चीज को पाने के लिए यहाँ पर ललच लगा करके यहाँ पर बैठी है, तपस्या कर रहे हैं, जब स्वयं लक्ष्मी पाने के लिए तपस्या कर रही है तब फिर हम लोग क्यों वो ब्रज प्रेम को पाने के लिए हम क्यों कठोर तपस्या नहीं करे। हाँ, और महाप्रभु बोले कलयुग में वो प्रेम को पाने का इसलिए महाप्रभु सरल उपाय बता दिया, कोई कष्ट ज्यादा करने का जरूरत नहीं कलयुग में, क्या करो। महाप्रभु कहते हैं आप हरे प्रबंध ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा ग्रीन चिरा राशि का जय प्रेम जगत में खरी लाली कांगा ने पाई या खाई लाचिया बाजा या करता है, जब ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत है। इस प्रेम को लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर उत्तम बड़ी हृदय किसी लोग इस प्रेम को पाने की अगर विशाल चैतन्य महाप्रभु का नाम लोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे अगर इतना भी बोल दोगे तो महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने अकाल अचानक उन्होंने सभी को उन्होंने दान कर दिया। इसलिए तरीके में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, खूब प्रसाद पाओ, खूब हरी कथा पाओ, खूब किस्तम करो, बस वो दुर्लभ ब्रज प्रेम हमें मिल जाएगी। इसलिए हम लोग लक्ष्मी को पास लाए, उससे प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी देवी, तुम्हारे हृदय में जैसे ब्रजेंद्र नंदन अब भगवान का रास में प्रवेश करके लालसा को लेकर के तपस्या कर रहे हो, हम जैसे एक दिन वो वस्तु के प्रति हमारा लोभ और एक दिन लालच हो।
Personality, so he gets in his golden chariot, he's got clothes that Krishna's given him. He's got a garland that Krishna's given him. Okay, I'll go and console the gopis. And when he comes there, he finds that the love of the gopis, it's like somebody's looking at Everest, and he's looking back so far, his head hat falls off. So similarly, Lakshmi Devi, she doesn't understand the elevated glories of the gopis. Actually, there is no austerity that one can perform in millions of lifetimes that one, it will enable one to enter into Braj. No austerity. What is the process? It's to follow the eternal association. Why? Because bhakti, Krishna consciousness, what our acharyas have come to give, what is it? It's the move in the heart of the eternal associates of Krishna in Braj. And we can only get it from them. We can't get it from anybody else. Like if you want milk, where do you get it from? You get it from a cow. Everyone drinks milk, but who here has got a cow? Anyone has a cow? No one's got a cow. So you get milk from a shop. Somebody's got a relationship with the cow. You've got one. Very good. One person has. Usually we get it from a shop because we don't have any relationship with the cow. Similarly, we don't have a relationship with the eternal associates of Krishna. So then Gurudev comes and he opens a barb shop in the material world. And then we can buy from him. So, when Chaitanya Mahaprabhu, Rasananda Prabhu, he was explaining, when Chaitanya Mahaprabhu, he went to South India, for 4 months of the rainy season, he was staying in Srirangam. And he associated with three brothers we were discussing just recently, Prabodhananda Saraswati, Vyankar Bhatt, and Thirumal Bhatt, and their son, Gopal Bhatt. So they were all worshipping Lakshmi Narayan in the Sri Sampradaya, Ramanuja Sampradaya. And they're thinking that Narayan is the Supreme Personality of Godhead, and Sri Lakshmi, she's his consort, and they're the Supreme Lord. So when Chaitanya Mahaprabhu had been there for some time, he completely understood their mood, of course, being super soul. But also he'd made a very, very thick relationship with them. Every day they were going to bathe, he was talking with them, laughing with them, joking with them. And sometimes they think, oh, when the rainy season finishes, what will we do? Who will we talk with? Who will we walk with? Who will we joke with? How will we have his beautiful darshan? So like this, the relationship is becoming very thick. He didn't immediately start arguing. Sometimes we think, oh, I'm going to defeat these rascals. I'm going to tell them what's what. No. Chaitanya Mahaprabhu, he made a loving relationship. And then he began to joke with them. He said, tell me one thing, I'm curious. Your Lakshmi, she's the supreme chaste lady in the universe. How come she wants to associate with Krishna? If she's so chaste, why does she want to relate with another man? That's not chastity. He's laughing. Huh? You can tell me. So Vyankar Bhatt, he said, well, you know, Krishna's an incarnation form. He's an incarnation of Narayan. Even in the Encyclopedia Britannica, you can find it. Krishna, he's the eighth incarnation of Vishnu. Are we not different? So many Hindus, they're thinking like this, that Krishna is an incarnation of Vishnu. This is not true. It can't be true. Because we see that anyone, in the Puranas, it's explained, anyone chanting Vishnu Sahasranam Stotra, they get so much punya. If you chant three names of Ram, same punya as chanting all 1,000 names of Vishnu. And one name of Krishna, same as three names of Ram. So we see that Krishna, actually he's the source of all power, the source of all potency. But many people, they're thinking Krishna, because he's naughty, he's immoral. So how he can be the Supreme Lord? This is not possible. And Chaitanya Mahaprabhu said, oh, so he's an incarnation of Narayan. So here's another question. You know, Uddhava in Srimad Bhagavatam, he's explaining that the gopis, they were associating with Krishna in the Rasa Lila, and he had his arms around their necks. But Lakshmi couldn't attain this favor. So how come that? Can you explain? Vyankar Bhatt, oh, I don't know. He said, I think you're the Supreme Personality of Godhead. You'll have to explain. So then Chaitanya Mahaprabhu, he began to explain that actually Narayan and Krishna, by tattva, they're the same. But by rasa, they're not the same. We see, for example, that Jivas, ordinary jivas, they have 50 qualities to a very slight degree. Brahmaji has those 50 qualities to a large degree. Shivji, he has 55 qualities. Narayan, he has 60 qualities. And Shri Krishna, he's got 4 extra qualities. His beautiful form, Rup Madhuri. His wonderful flute playing that enchants everyone in the universe. It stuns everybody. Venu Madhuri. Then, Prem Madhuri. The extraordinary love of the devotees of Krishna in Braj. Which you can't find anywhere else. No one twists Narayan's ear. He doesn't have a mother and father to twist his ear. Narayan is orphan. Krishna has mother and father. And then, Leela Madhuri, Prem Madhuri, these beautiful pastimes that they're performing and the love that they have. In Braj, everyone lives totally absorbed in these 4 special qualities of Krishna. Therefore, we can understand that Krishna has something that nobody else has. Narayan doesn't have, nobody else has. Nrisingadev doesn't have. Nrisingadev can't perform Rasa Leela. Even Ramchandra can't perform Rasa Leela. Not possible. So gradually, Chaitanya Mahaprabhu, he was explaining, giving beautiful, beautiful Harikathas. Ratananda Prabhu was explaining that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, but he's in the mood of Srimati Radhika in separation from Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Srimati Radhika pouring out his heart, like Srimati Radhika pouring out her heart, what kind of Harikatha is going to be? Gurudeva said, Chaitanya Mahaprabhu is combined form of Radha and Krishna. So Srimati Radhika is so beautiful, Krishna is so beautiful, and Mahaprabhu is more beautiful. And his Harikatha is more beautiful. So, Yenkat Bhat, Prabodhanand Sarasati, they're all completely charmed. And because they're Sarup, actually by Sarup, they're devotees of Krishna, so they began to worship Krishna in Braj. If their Sarup had not been, even Chaitanya Mahaprabhu could not have changed. Murari Gupta, because he's incarnation of Hanuman, Chaitanya Mahaprabhu, he said, why don't you worship Krishna? So he said, okay, you're telling me. So then I accept your instruction. And the next morning he came crying. He said, I can't. I give him my life. I give him my head at the feet of Ramchandra. I can't give up, but I can't disobey your orders. Even Chaitanya Mahaprabhu told him. Anupam, the brother of Rupa and Sanatan, he was also a devotee of Ramchandra. So they said, why don't you worship Radha and Krishna in Braj? We'll have such beautiful Harikatha Kirtan together. Okay, you're my senior brothers, then I have to do. He was crying and praying all night, and in the morning he came crying and crying. I can't. I give my life at the feet of Ramchandra. I can't. So if Sarup is like that, it can't be changed. But there's Sarup, Prabodhananda Sarasati, for example. We know that he's Chunga Vidya in Krishna Leela. And Gopal Bhatt, he's Guna Manjari in Krishna Leela. So they began to worship Radha and Krishna in Braj under the guidance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, here, Lakshmi Devi, she's performing great austerities, and she has very, very great nishtha in worshipping Krishna. So, here in this sacred place, we offer obeisances at the lotus feet, and we pray that we can get her nishtha and her profound desire to attain the association of Krishna in the Rasa dance. Hare Krishna, Vanshakalpaturubhe, Shakti Parasimhavacha, Mudidanam Bhavane, Jo, Vaishnavi, Jo, Namo, Namaste.
Bangla Ulan? আপনি একটু বাংলা বলুন দেখি কেমন বলতে পারেন? আচ্ছা এক মিনিট, আমরা যে স্থানে এসেছি আপনারা শুনলেন লক্ষ্মী দেবীর বন, বেল বন, শ্রীবন, এই বনে লক্ষ্মী দেবী তপস্যা করেন, রাধা কৃষ্ণের মধুর লীলার মধ্যে রাধের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য। এখন রাসের মধ্যে আছে নাকি? রাস কি কামকিড়া না রস লীলা? কামকিড়া তো নয়, সেখানে আছে রস বিলাস, হৃদয়ের ভাব। সেই ভাবের মধ্যে আছে কি? স্থায়ী ভাবের উপরে সাত্বিক, সঞ্চারী, দেবচারী ইত্যাদি ভাবগুলি যখন উদ্বেগ সময়ে সেই ভাবের সমূহ আছে, তরঙ্গ হয়, সেই ভাবের উচ্ছ্বাস কৃষ্ণ অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে যায়। একটি উচ্ছ্বাস আর একটি দেহ সুখ কাম বিকাশ, দুইটি কোনদিন এক নয়। এই জন্য কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যে লীলা করেন তাহার গোপীগণের ভাবের উচ্ছ্বাসকে তিনি আস্বাদন করেন, রসকে আস্বাদন করেন, তাহা দেখে তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। কৃষ্ণ যখন রাজ করেছিলেন তখন তাহার বয়স কত? 8 বছর বয়স। তো রাধারানী কয় বছরে? 15 দিনের ছোট, তাই না? তো 8 বছর বয়সের ছেলে মেয়েরা যদি নাচানাচি করে, খেলাধুলা করে, কেউ কোনোদিন খাবে? স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার মতো সেখানে কোনো ব্যাপার তো নাই, সেখানে খেলাধুলা আনন্দ বিয়া, তাহার মধ্য দিয়ে প্রীতির আছে আস্বাদন। এই হচ্ছে রাসবিহার, সেখানে ভাবের আস্বাদন। ভাবের আস্বাদন ঐশ্বর্য হয় না, মাধুর্যই হয়ে থাকে। কৃষ্ণ রাজ করেছেন গোপীগণের ভাবকে আস্বাদন করেছেন। ভাব তো আর অর্থের মধ্যে সম্পদার মধ্যে থাকতে পারে না। এই জন্য কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীকে বললেন কি, লক্ষ্মীদেবী তুমি ঐশ্বর্যকে ছাড়ো, ঐশ্বর্যের অভিমান নিয়ে, যেমন মনে করেন কোন স্ত্রী যদি খুব সুন্দরী নানা রকমের আভূষণ ইত্যাদি করে সেজে গুজে থাক বাটে, এখন নিজেকে দেখাইতে থাকে যে আমি মানি, তো স্বামীর সঙ্গে এখন করতে পারবে কিনা? তার স্বামীও তার সঙ্গে তদ্রুপ বরাবর ভাব করতে পারে না। যেখানে ঐশ্বর্যের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, রূপের অভিমান আর ধনের অভিমান, এই সমস্ত অভিমান অহংকার নিয়ে পরস্পর মধ্যে প্রীতি ভালোবাসাটা জাগবে না। অভিমান ছেড়ে পরাক্রমের মধ্যে আসছে, তাহলে সেখানে প্রীতি ভালোবাসা থাকে। তো লক্ষ্মী দেবী ঐশ্বর্যের অভিমান নিয়ে, রূপের অভিমান, আমি সব থেকে বিশ্ব সুন্দরী, সব থেকে বড় সুন্দরী আমি, জগৎ বরেন না লক্ষ্মী দেবী। আবার ধনের অভিমান, কি ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেব, সেই সম্পদের অভিমান নিয়ে পরস্পরের মধুর ভাবটা হয় না। পরস্পরের প্রতি মেলামেশার মধ্যে দুইজনের ভাবের মধ্যে সমানতা আসা চাই। যদি উঁচা নিচা থাকে সেখানে সম্ভ্রম সংকোচ এসে যায়। এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ ব্রজবাসী গণের মাধুর্য প্রেমকে আস্বাদন করলেন, তিনি নিজেও তাহার ভক্তকে একদিকে লুকিয়ে রাখলেন, সাধারণ নরওয়াল তাহাদের সঙ্গে যে যেমন তাহার সঙ্গে খেলা করলেন, আর সেই ভাবের মধ্য দিয়ে প্রেম প্রতিকে আস্বাদন করলেন। যে ভাবের চমৎকারিতা, সেই ভাব চমৎকারিতা ঈশ্বরের মধ্যে প্রকাশ পায় না। এই জন্য মাধুর্য তাকে ঐশ্বর্যের দ্বারা পাওয়া যেতে পারে না। যেখানে দুইজনের ভাব এক হবে প্রতি ভালোবাসা, কৃষ্ণ কিছুতেই তাহাকে গ্রহণ করতে পারছেন না। লক্ষ্মী দেবী ধনের অভিমান নিয়ে ধন সম্পদ আছে সেই ভাবে পাচ্ছে না। উদ্ধব এখন বললেন কি, রাসুস্ত ভোজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ নারায়ণ শ্রেয়ঙ্গ যৌ নিতান্তরতে প্রসাদ, প্রসাদ লক্ষ্মী দেবীও লাভ করতে পারে নাই, కృష్ణ అనుగ్రహం పచ్చిన శ్రేష్ఠ అనుగ్రహం ఆయన ఎవరు తిరిగా చాయిలేదు సాహోరణ కన నా సై భావ సై పెట్టి గెలి ఐశ్వర్యకి ఛాడితే లక్ష్మీదేవి నారాయణ అంక సాయిని పక్క విలాసిని నారాయణ ఇది శ్యామ ఆనందేది నారాయణకి ఆనందం వల్లకి విలాసిని హోతే పారి నారాయణ అంక సాయిని హోతే పారి పరంతు గుప్పిగానే కృష్ణ సంగే রাসের মধ্যে আনন্দ নৃত্য করবেন আর ভাব চৌকার আস্বাদন করাবেন সেটা কোনদিন সম্ভব নয়। এই জন্য রাসের মধ্যে গোপীগণে প্রবেশ হলো অন্য কারোর নয়। আবার গোপীগণ মান করে না চলে যায় তাহার জন্য কৃষ্ণ তাহাদের গলদে ধারণ করেছেন আর গোপীগণকে মানাচ্ছেন। কিন্তু এই মানা লক্ষ্মী দেবীকে হয় নাই। লক্ষ্মী দেবীকে মানাইবার প্রয়োজন এবং তিনি কি নিয়ে মান করবেন যে প্রগাঢ় প্রেম প্রতি সেইখানে মানব ইমান জাগে তখন স্ত্রী কোনো মানব ইমান করে স্বামীর কথা বলতে পারে যেখানে সম্মান সংকর সেখানে ওই মানবিমান থাকবে না হাত জোড়ে কথা বলবে। এখন সেই কারণে বললেন কি লক্ষ্মী প্রবেশ করেন নাই তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শ্রীবৎসিন্ন রূপে নিজের বক্ষস্থলে রেখেছিলেন ওই স্বর্ণরেখে থাকলেন। কিন্তু ব্রজগোপী হয়ে ভাবের চমৎকারিতা প্রকাশ করা বা আস্বাদন তা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণ নিজেই বললেন আমি যদি কামী পুরুষ হতাম গোপীগণকে বললেন আমি যদি কামী পুরুষ হতাম তাহলে তোমাদের সঙ্গে যথেষ্ট বিহার করব কিন্তু তা তো আমি করি নাই। এত সমস্ত আমি ভোজ বিলাস করি নাই আবার তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছি গিয়েও আবার যদি আমি উদাসীন হতাম তাহলে ফিরতাম না। অতএব আমি স্বামী পুরুষ আর উদাসীনও নাকি আমি যে প্রেমী আমি ভক্তের প্রেমকে চাই। কৃষ্ণই যদি কাম বাসনা থাকতো আর যদি তিনি কামী পুরুষ হতেন তাহলে কৃষ্ণের কাছে কত গোপী ছিল রাসের মধ্যে 1 মিলিয়ন ব্রজগোপী। তো কৃষ্ণ তাহলে যথেষ্ট বিষয় বাসনা তৃপ্তি করতে পারতেন কিন্তু তা করেন নাই। বাংলায় গেলে লোকে প্রশ্ন করে বলে আচ্ছা কৃষ্ণ এত লীলা করলো সব কিছু করলো রাধারানীর একটা করে ছেলে হলো না কেন। বলে রাধারানীর একটা সন্তান নাই আর তিনি পরাম্পর করতেন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। বলে রাধারানী কৃষ্ণ সঙ্গে রাজ করেছেন 8 বছর বয়সে 8 বছর বয়সে ছেলে হয় কারণ আর কৃষ্ণ প্রজেতে থেকেছেন 11 বছর এরপরে তো এখন মথুরা চলে গেলেন দ্বারকায় চলে গেলেন তাহলে ওই বয়সের মধ্যে সন্তান হতে পারে না। আর তিনি কি চেয়েছেন নাকি কোন সন্তান তখন তো মেয়েরা মেচুয়ারও হয় না তাহলে কি করে সম্ভব হবে তাহলে ভোগ বিলাস বিষয় বাসনা তৃপ্তি এইগুলি নয় সেখানে নিত্য বিহার আনন্দ এবং ভাবের চমৎকারিতা ভাব। ভাবরসের আশা। এই ভাবরস অন্য কোন কিছুতে আসে না, এই জন্য এই কথা বলেছেন। তা না হলে ভাগবতে লক্ষ্মী দেবীর নাম বহুবার এসেছে, এমনকি রমা কিরা পাবন দেব কৃষ্ণ হল, আর সেই থেকে ব্রজভূমি হলো লক্ষ্মী দেবীর ক্রীড়াস্থলী, রমা দেবীর ক্রীড়াস্থলী। ওখানে বলছেন কি রাধারানী কৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি হয়ে গেল মহালক্ষ্মী, তিনি সর্বত প্রকারে সেবা করছেন। আর সমস্ত গোপীগণ তার অবতরিত হয়ে কৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করছেন, সেবা করছেন। অতএব সেখানে কোন ভৌতিক ভাব প্রাকৃত ভাব তো নাই। আবার বললেন কি রমানাভম নব কুঙ্কুমারুণম, কৃষ্ণ কখন বাঁশি বাজাইলেন, যখন রমা দেবীকে দেখলেন লক্ষ্মী দেবীকে, এখন সেই লক্ষ্মী দেবীকে রাধারানী বলে রাধারানীর মুখমণ্ডলটি কেমন বলে ওই যে পূর্ণচন্দ্র সকলেই দেখে থাকে ফুলম, ওই চন্দ্রবিন্দের মতোই রাধারানীর মুখমণ্ডল, আর অরুণ বর্ণের লাল বর্ণের, আর মুক্তি গোল রাধারানীর মুখ। শুধু তাই নয়, প্রজে যত গোপী আছে সকলের মুখ গোল, আর দেখতে অপূর্ব সুন্দরী সব রাধারানী, সবসময় দেখতে ওই 12 বছরের, খুব বেশি বড় নয়, খুব লম্বাও নয়, আর খুব ছোটও নয়, মিডিয়াম। এখন রাধারানী সব সময় ভাবিতে বিভাবে, তাহার মধ্যে আছে মহাভাব রস, প্রজাগোপীগণ তাহার আনুগত্য করায়, তাহাদের মধ্যে সেই মহাভাব রসে কিঞ্চিত কিঞ্চিত অবস্থান করে, কৃষ্ণ সেই রসকে আস্বাদন করে। তিনি কোন ভৌতিক সুখের অভিলাষী নয়, অথবা দেহ সুখ বিষয় বাসনা তৃপ্তি এইগুলি তার মধ্যে নাই, তিনি তো প্রেমিক, প্রেম চান। কার কাছে কতটুকু প্রেম আছে, প্রতি ভালোবাসা আছে দেখা যায়, কে কত ভালোবাসে। এখন কৃষ্ণ যখন ছেড়ে দিয়ে চলে যান, তখন গোপীগণ বিরহে অধীন হয়ে কাঁদছেন, তার মধ্য দিয়ে তাহাদের প্রেম প্রতি উৎকণ্ঠাকে তিনি দেখছেন। কিন্তু আরো অন্যজন কৃষ্ণ যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, আর কোনো চিন্তা নাই, নিশ্চিন্তে আছে, আমরাও নিশ্চিন্তে আছি, ভালোই আছে। কৃষ্ণের জন্য কেউ পাগলিনী হয় নাই, উন্মাদিনীও হয় নাই, হয়েছেন কেবল ব্রজগতী আর রাধারানী, তাই না? সেই জন্য কৃষ্ণ রাধারানীর প্রতি এত অনুরক্ত, আর রাধারানী ও কৃষ্ণকে ছাড়া না, সেখানে আছে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেম। প্রেমের মধ্যে সসুখ বাসনা অত্যন্ত অহিতকারী, প্রেমের গুরুত্বকে নষ্ট করে দেয়। তো ভৌতিক জগতে আছে সসুখ বাসনা, লক্ষ্মী দেবীও ভাবেন কৃষ্ণ নারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আনন্দিত হন, আর আমাকেও আনন্দ দেন। দ্বারকার রানীগণ তারাও ভাবেন আমারও বিবাহিতা পত্নী, অতএব বৈবাহিক জীবন হারাভরা হওয়া যায়, সংসার জীবনে পুত্র যদি না থাকে, সন্তান না থাকে, তাহলে নারীর জীবন অধুরা, অপূর্ণ জীবন। সেই জন্য বৈবাহিক জীবনে তারা সন্তান সন্ততি চেয়ে নিয়েছে। কিন্তু ব্রজগোপীগণ রাধারানী তারা কোনদিন কি চেয়েছেন? তারা তো পতি পুত্র ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র কৃষ্ণের চরণে মন প্রাণ হৃদয় দিয়েছে, तार वैशेषिक सुख संसार सुख धन संपद पुत्र परिवार किछु इच्छा नहीं तार सर्वक्षण चेते कृष्ण सेवा कृष्ण आनंद कृष्ण प्रति विधान सही कारण চমৎকারিতা কে দেখে লক্ষিত বিমুগ্ধ হয়ে তিনি ওইখানে বসে বেল বনে তপস্যা করছেন আর কে লক্ষ্মী শত সহস্র সম্ভ্রম সত্যমান লক্ষ্মী দেবী হাজারো প্রকারে হাজার হাজার ভাবেতে সম্ভ্রমের সহিত সেবা করছেন কোন প্রকারে কোন কিছু কম না হয়ে যায় কোন তোটে বিচ্যুতি না হয় এইভাবে কৃষ্ণের সেবা করে যাচ্ছে আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি বৈকুণ্ঠে অতুল বৈভব ঐশ্বর্য কল্প বৃক্ষ কল্পলতা কিরীট কুণ্ডল আভূষণ অলঙ্কার মণি রত্ন দূরে সরিয়ে দিয়ে বনফুল বনমালা গুঞ্জামালা এইভাবে বেশভূষায় সুশোভিত হয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করছেন এই জন্য ব্রজ প্রেম ব্রজ রীতি আর বৈকুণ্ঠ ভক্তি বহু অন্তর এই সমস্ত কথা বর্ণন হয়েছে আবার আমরা বিকাল বেলা এই সব কথা শুনব আপনারা যাওয়ার সময় নৌকা পার হয়ে যেতেই একটা ঝাড়ু মন্ডল পড়বে ওখানে লেখা আছে ঝাড়ু মন্ডল ওইটি যাওয়ার সময় দর্শন করে যাবে ওর কথা পরে বলা হবে আবার ওখানে একটা ওই ডাল ভাঙার চাকি আছে ওই চাকির উপরে কৃষ্ণ পা তুলে দিয়েছিলেন এবং সেই জন্য ওই জাতাটা পায়ের চরণ চিহ্ন নিয়ে এখনো আছে ওইখানে শ্যামানন্দ প্রভু ওখানে ঝাড়ু লাগিয়েছিলেন এই জন্য তিনি রাধারানীর পায়ের নুপুর পেয়েছিলেন সেই পায়ের নুপুর পাওয়ার জন্য নাম হলো ঝাড়ু মন্ডল তো ওই স্থানটি আপনারা সকলে যাওয়ার সময় দর্শন করে যাবেন আপ সবই লোক নাও পার করকে উস পার জব যায়েঙ্গে ঝাড়ু মন্ডল মে অন্দর দর্শন করতে হুয়ে ফির আপনে মন্দির মে গোপীনাথ ভবন চলেঙ্গে হোয়েন উই আর গোয়িং টু আদার সাইড অফ যমুনা দ্যাট সাইড সো দেয়ার হ্যাভ ঝাড়ু মন্ডল ওয়ান প্লেস very suitable place, Samananda Prabhu, when clean bank of Jamuna, at that time he found one uncle belt. So Radhika's uncle belt, so he took after then, he poured Radhika's feet. So Radhika gave place to him. So there, that place called Haru Mandan, so everyone can see, after then talking Harikatha, there is no problem.
আপনারা সকলে যমুনা পাড়ের পয়সা দিয়ে দিবেন ওইখানে গেটে রাধানন্দ বহু আছে এভরিওয়ান প্লিজ ক্যান গিভ সাম মানি ফর ওয়ে অফ যমুনা